तीन बातें साथ जुड़ी हुई हैं इस यात्रा से। पहली तो है कि ये पहले से ही तय था कि चीनी विदेश मंत्री यहाँ आएंगे, क्योंकि अभी आगे चल के ये G20 होने वाला है और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, और भारत में ये जो ब्रिक्स के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके लिए भी थोड़ी सी उनको बातचीत और तैयारी करनी थी। दूसरी बात यह है कि जो भारत और चीन के बीच में एक उच्च स्तर पे जो एक निरंतर मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है, ये उसमें भी आ जाता है, क्योंकि तय ये हुआ है कि दोनों देशों के बीच में विदेश मंत्री के स्तर पे और भी उच्च स्तर पर नियमित रूप से अगर मुलाकात और बातचीत चलती रहे तो वो बहुत सी बातों को उस स्तर पर सुलझाया जा सकता है, और एक राजनीतिक एक परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं या जो उलझने हैं या जो तनाव हैं उनके बारे में बातचीत हो सकती है। और तीसरा ये है कि क्योंकि हाल ही में भारत और चीन के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं जिनसे दोनों तरफ कुछ नाराजगी भी है, कुछ एक तरह से देखा जाए कि मनमुटाव बहुत पैदा हो गया है, तो उसको भी खुलकर उसके बारे में बातचीत करे और चीन अपना पक्ष रखे, भारत अपना पक्ष रखे। तो इस तरह से मैं नहीं मानती हूँ कि ये सुपरफिशियल है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में जो अब एक धीरे धीरे एक व्यापक एक स्वरूप बन रहा है साझेदारी का, उसको थोड़ा सा महत्व अगर देना है तो ये तनाव को नियमित रूप से रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका है कि फिर दोनों एक दूसरे के समक्ष अपने अपने पक्ष रखकर अब खुलकर बातचीत करें।
जी, अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो मुलाकात होगी इससे जो एक तो क्योंकि दो मुद्दे हैं, एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मुद्दा है और एक साउथ चाइना सी को लेकर मुद्दा है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच इन दोनों मुद्दों पर किसी भी तरह की पहल होगी कि जो दोनों के जो रुख हैं उसमें थोड़ी नरमी हो सकता है दिखे?
जो साउथ चाइना सी की बात आपने कही है वो तो दोनों देशों के बीच का मुद्दा नहीं है और ना ही भारत ने उसको चीन और भारत संबंधों के एक हिस्से में डाला हुआ है। ये तो जैसे कहते हैं कि क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय पहलू उसमें था जब वो मामला पीसीए में गया था, उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत ने एक सामान्य तरह का एक वक्तव्य जारी किया था, तो ये दोनों का मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है कि चीन में कई ऐसे तबके हैं जिन्होंने भारत का जो एक एक जनरल और काफी केयरफुली वर्डेड एक जो स्टेटमेंट उन्होंने की थी उसका उन्होंने सराहना की है कुछ तबकों ने, तो इसको तो आप हटा दीजिए। एनएसजी जहां तक सवाल है उस पे जरूर शायद बातचीत होगी खुल के, और शायद ये मौका रहेगा कि कुछ और फ्रेंकली बातचीत हो। और एक जो अभी हाल ही में कमेंट्री जो शिन्हुआ में निकली है कि ये एनएसजी का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से एकदम बंद नहीं है, तो शायद ये एक मौका है कि भारत और भी इसको जोर दे के अपना पक्ष चीन को समझाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा रहेगा और G20 और ब्रिक्स जो है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि कई लोगों का मानना यह है कि अब ब्रिक्स की जो एक तरह से इम्पोर्टेंस है वो कम हो रही है, या G20 जो आ रहा है और जो चीन चाहता है कि एक नया साझेदारी का एक ताना बाना बुने, इन सब के लिए तो एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत चीन के जो संबंध हैं वो व्यापक होते जा रहे हैं, और चूंकि थोड़ा तनाव बढ़ा है तो ये एक मौका है कि आप जो आपसी जो मुद्दे हैं उनको भी आप कर लीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर चिंता कर लीजिए, और लेकिन जो और भी मुद्दे हैं जहाँ पे दोनों देशों को साथ साथ चलना है उनको उनके ऊपर आंच ना आए, इसलिए उनको भी बातचीत उनकी ऊपर भी बातचीत आवश्यक है।
ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आज दोनों देशों के बीच जो सुर्खियों से अगर आप आकलन करें तो ऐसा लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या एक जो जियो स्ट्रैटेजिक अगर आप उसको छोड़ दे तो क्या इकोनॉमी को अगर देखें तो व्यापार के स्तर पर रिश्ते क्या अच्छे हैं दोनों देशों के बीच में, या वहां पर भी तनाव है थोड़ा बहुत?
आर्थिक रिश्तों की जब बात करें तो मैं तनाव तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये जरूर है कि भारत की तरफ से अब कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल से जो एक स्वरूप सामने आ रहा है भारत चीन आर्थिक संबंधों का, वो कोई विशेष रूप से संतोषजनक नहीं है। और ये कहना कि सुर्खियों से अगर अलग हम हटें तो शायद उतना रिश्तों में उतनी समस्या नहीं है, ये भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि तनाव जो है वो थोड़ा बढ़ा है, और सिर्फ एनर्जी को लेकर ही नहीं है, लेकिन ये जो चीन पाकिस्तान के साथ जो CPEC के ऊपर आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी भारत को काफी चिंताएं हैं। तो मेरी समझ से तो ये है कि आर्थिक जो पहलू है जिसकी वजह से भारत चीन संबंधों को एक ठोस स्वरूप मिल रहा था, उसके ऊपर अब ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ते को अब और व्यापक रूप देना है। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसको किस तरह से क्रियान्वित करना है। दोनों तरफ से समस्याएं भी हैं, लेकिन उन समस्याओं से ही एक हल निकल सकता है, और उन समस्याओं के ऊपर चिंतन मनन करने से और कुछ एक राजनीतिक दिशा दिखने से शायद आगे बढ़ने का रास्ता मिले।
जी, और एक आखिरी सवाल अलका जी आपसे कि आप भारत और चीन के रिश्तों को शॉर्ट टर्म में कहां जाते हुए देखती हैं?
तनाव इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो दोनों तरफ से जो खासकर जो सामरिक तबके हैं उनकी नजर में ये जो एक पावर प्ले चल रहा है वो उसका आंकलन इस तरह से हो रहा है कि चीन शायद भारत को पूरी तरह से उभरने नहीं देगा। तो एक ये एक बैकड्रॉप है इसका, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जब भारत और चीन एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत कम अल्टरनेटिव्स हैं कि अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे उस तरह से, क्योंकि ये तो अब सीधी सीधी बात तो ये है कि चीन एशिया में अब सबसे बड़ी शक्ति है। ये दोनों महाशक्तियों, एशिया की महाशक्तियों को एक दूसरे से बैठकर बातचीत करने के अलावा मुझे कोई विकल्प नहीं दिखता है।
अलका जी, वक्त निकालकर हमें इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों से बात करके।